नमस्कार। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हिंदी सारांश, प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, प्रकाशक ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। भाग 7, नंबर 11, अधिनियम के कार्यान्वयन और अधिकारों के संरक्षण पर निगरानी के लिए व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं का वर्णन अनुभाग 60 से 85 में किया गया है और ऐसी व्यवस्थाएं केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर होंगी। पहला, केंद्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त विकलांगता और राज्य स्तर के आयुक्त विकलांगता। अनुभाग 74 से 83 में इन अधिकारियों की चर्चा की गई है। केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य आयुक्त और उनकी सहायता के लिए दो आयुक्तों का प्रावधान है, जिनमें से एक आयुक्त स्वयं संदर्भित दिव्यांग होने चाहिए। साथ ही मुख्य आयुक्त के लिए 11 सदस्यों की एक सलाहकार समिति भी होगी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मुख्य आयुक्त का पद केंद्रीय सरकार के सचिव के समकक्ष होगा और आयुक्तों के पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष होंगे। कार्य अवधि 3 वर्षों की होगी। राज्य स्तर पर एक विकलांगता आयुक्त होगा और उसकी सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 5 सदस्यों की सलाहकार समिति होगी। मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों के प्रमुख दायित्व होंगे क, अधिनियम और संबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा, ख, दिव्यांगजनों के अधिकारों की अवहेलना या भेदभाव संबंधी शिकायतों की जाँच तथा जहां तक संभव हो विरोधी पक्ष से नोटिस का उत्तर प्राप्त होने की तारीख के 3 महीनों के अंदर शिकायतों का निपटारा, ग, अधिनियम संबंधी अन्य बातों की निगरानी। मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्तों के आदेशों का पालन अनिवार्य तो नहीं है, किंतु सामान्यतया उन्हें स्वीकार किया जाता है। दूसरा, केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड। अधिनियम के कार्यान्वयन पर परामर्श देने और क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु केंद्र और राज्य स्तरों पर सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाएगा, जिनका उल्लेख अनुभाग 60 से 71 में किया गया है। केंद्रीय बोर्ड में लगभग 100 सदस्य होंगे, जबकि राज्य स्तरीय बोर्डों का आकार कुछ छोटा होगा। इन बोर्डों की अध्यक्षता दिव्यांगता संबंधी मामलों का नेतृत्व करने वाले मंत्री करेंगे। इनके सदस्यों में अन्य के अतिरिक्त दिव्यांगता क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ और 10 ऐसे व्यक्ति होंगे जो जहां तक संभव हो स्वयं संदर्भित दिव्यांग हों और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रमुख गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों। इन्हें संबद्ध सरकारें मनोनीत करेंगी और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्य बोर्डों में बारी बारी से 5 जिलों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाएगा। तीसरा, दिव्यांगता पर जिला स्तरीय निकाय। राज्य सरकारें अधिसूचित कार्यों के निर्वहन हेतु प्रत्येक जिले में दिव्यांगता समिति का गठन करेंगी, जिनके ब्यौरे संबद्ध सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में अंकित होंगे। मामलों के त्वरित निपटान हेतु राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के परामर्श से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय के मामलों के संचालन हेतु एक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त करेगी जो कम से कम 7 वर्ष से लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर रहा हो या अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हो। नंबर 12, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि। इस प्रकार की निधि का उल्लेख अधिनियम के अनुभाग 86 और 88 में किया गया है। दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न कोषों और निधियों माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार बैंकों, नियमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय धनराशियों, अनुदान, उपहार, दान, वसीयत आदि द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी धनराशियों को मिलाकर एक निधि अस्तित्व में आएगी, जिसे दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी दिव्यांगजनों हेतु एक निधि का गठन होगा। इन दोनों निधियों के खातों की समुचित लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।
इस ऑडियो को IVR पर पसंद कर इसे आगे भेजना चाहते हैं तो 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS किया जाएगा और अगर आप इनेबल वाणी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पसंद किए गए ऑडियो को डाउनलोड करें और फॉरवर्ड करें।